हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विश्वास और तुम्हारा अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, माधुरी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा और गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। अर्नव उसकी बात का जवाब नहीं दे सका और परेशान होकर उसे देखने लगा। माधुरी ने सामने रखा ग्लास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पी गया। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया, अर्नव, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो गलत था। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा गलतफहमी का शिकार होना पूरी तरह से गलत नहीं है। तब के हालात शायद ऐसे ही रहे होंगे, पर धृति की सच्चाई पहले दिन से मैंने उसकी आंखों में देखी है, जो तुम नहीं देख सके, और उसके साथ गलत पर गलत करते चले गए। पर क्योंकि गलत तुमने धृति के साथ किया है, दोषी और गुनाहगार तुम हो, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी इस मामले में। सच्चाई जानने के बाद तुम्हें सजा देना या माफ करना, ये फैसला पूरी तरह से धृति ही लेगी। तुम्हारे साथ इस रिश्ते में रहना या तुमसे अलग होना, ये फैसला लेने का अधिकार भी सिर्फ उसका ही है। मैं तुम दोनों के बीच बोलने वाली नहीं हूँ, पर एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, धृति को तुम पहले ही बहुत तकलीफ पहुँचा चुके हो। अगर अब तुम्हारे कारण उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और धृति भले तुम्हें कुछ न कहे पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। और एक बात, जितनी जल्दी हो सके धृति को सच्चाई बता देना, वरना मैं खुद उसे सब बता दूंगी, और उसके बाद धृति का जो भी फैसला होगा उसे उसमें मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, धृति को अब मेरे कारण कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं बहुत जल्द खुद उसे पूरी हकीकत बता दूंगा, और आखिरी फैसला धृति का ही होगा। अर्नव ने माधुरी को आश्वस्त करने की कोशिश की। माधुरी ने बुरा मुंह बना लिया पर कुछ बोली नहीं। अर्नव और कबीर की निगाहें अब एक दूसरे की ओर घूम गईं। माधुरी पहले ही गुस्से में थी, अब उससे बात करना खतरे से खाली नहीं था, पर बात तो करनी ही थी। पर इससे पहले कि अर्नव बात शुरू करता, माधुरी ने खुद ही उनसे सवाल पूछ लिया, मुझसे क्या चाहते हो तुम? ये सब मुझे क्यों बताया तुमने? कोई तो वजह होगी तभी मुझे यहाँ बुलाया है, वरना मुझे ये सब बताने के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता। कबीर और अर्नव दोनों की निगाहें अब माधुरी की ओर घूम गए। वो चेयर पर फैल कर बैठी थी, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए भौहें चढ़ाए उन्हें देख रही थी। हम आकाश के असली गुनाहगार को सजा दिलाना चाहते हैं और इसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अर्नव का जवाब सुनकर माधुरी की भौहें और भी सिकुड़ गईं और आंखें गहरी हो गईं। साफ साफ कहो कि कैसी मदद चाहते हो तुम मुझसे? तुम जानती ही हो कि सृष्टि ने आकाश के साथ क्या किया है, और अब मैं चाहता हूँ कि उसे उसी के तरीके से सबक सिखाया जाए। एक झूठे प्यार के नाटक उसने आकाश के साथ रचा और उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही एक नाटक अब मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। अर्नव ने जुनूनियत भरे लहजे में कहा और चुप हो गया। माधुरी, जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, उसने अर्नव को घूरा और झल्लाते हुए बोली, मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जो कहना है एक बार में कहो, ये पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है मुझे। बोलो क्या चाहते हो तुम मुझसे, क्योंकि जैसा तुमने कहा उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं तो उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा नहीं सकती, और अगर तुम ऐसा करना चाह रहे हो तो तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। सो बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? एक्चुअली अभी मैं धृति और अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस काम के लिए कबीर को चुना है। अर्नव ने जैसे ही ये कहा, माधुरी की निगाहें कबीर की ओर घूम गईं। उसने तीखी नजरों से उसे घूरते हुए दांत किटकिटाए, पर इससे पहले कि वो गुस्से में उस पर झपट्टा मार पाती, कबीर ने तुरंत ही अपने बचाव में सफाई पेश की। गुस्सा नहीं मधु, ये मेरा नहीं अर्नव का प्लान है, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम इजाजत दोगी मैं तभी इस प्लान में शामिल होऊंगा। माधुरी अब भी उसे घूरती रही, फिर एकाएक उठकर खड़ी हो गई और एक पैर कबीर की कुर्सी पर रखते हुए उसकी ओर झुक गई। घबराकर बेचारा कबीर अपनी चेयर से चिपक गया। माधुरी ने उसकी ओर झुकते हुए उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए कर्कश स्वर में बोली, मैं उस लड़की को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ जिसके कारण धृति को इतना दर्द सहना पड़ा। जो करना पड़े करो, पर उसे अपने प्यार प्यार में इस कदर पागल कर लो कि तुम्हारे बिना वो एक पल भी जीने के बारे में सोच भी न सके। उसे इस कदर तोड़ो कि मरने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता न बचे। बहुत शौक है उसे लोगों के दिल और उनकी जिंदगियों से खेलने का। एक खेल तुम खेलो उसके साथ और ये इंश्योर करो कि ये खेल उसकी मौत का खेल बन जाए। पर ये सब करते हुए इतना याद रखना कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। आई होप इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे। माधुरी ने चेतावनी भरी नजरों से उसे घूरा, फिर मुंह घुमाकर अर्णव को आंखों से ही वार्निंग दी, फिर जाने के लिए पलटी ही थी कि अर्णव की आवाज उसके कानों से टकराई। माधुरी, मुझे तुम्हारी भी एक हेल्प चाहिए। उसके शब्द कानों में पड़ते ही माधुरी रुक गई। वो झटके से अर्णव की ओर पलटी और भौहें उछालते हुए इशारे में सवाल किया, जिसके जवाब में अर्णव ने गंभीरता से कहा, वैसे तो धृति में कोई कमी नहीं है, पर कुछ फील्ड में वो बाकियों के सामने स्टैंड नहीं ले पाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ग्रूमिंग क्लासेस दो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, ताकि वो अपने लिए स्टैंड लेना सीख सके, इस हाई प्रोफाइल दुनिया में ठीक से एडजस्ट हो सके और वो सब हासिल कर सके जो वो डिजर्व करती है। हो जाएगा, माधुरी ने जवाब दिया और पलट कर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने चैन की सांस ली। अर्णव ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और अपनी टाई ढीली करते हुए बोला, हाँ, इट्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल दैट गर्ल, इतनी खतरनाक लड़की से तूने प्यार कैसे कर लिया। अर्णव ने भी गहरी सांस भरी और उसकी बात सुनकर कबीर ने मुंह बनाया और उसे घूरते हुए बोला, जैसे तुमने अपनी दुश्मन से दिल लगा लिया। कम ऑन, धृति बहुत सीधी है, नहीं होनी चाहिए थी, तुझे तो कोई माधुरी जैसी ही मिलनी चाहिए थी, तेरी सारी हेकड़ी निकालकर सारी अकल ठिकाने लगा देती। नहीं, मेरे लिए मेरी मासूम गुड़िया ही बहुत है, तेरी लेडी डॉन तुझे ही मुबारक, अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर लैपटॉप ऑन करने लगा। कबीर ने पानी पिया, फिर कुछ सोचते हुए सवाल किया, अर्णव, ये थोड़ा रिस्की नहीं है? अर्णव के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसकी निगाहें कबीर की ओर उठ गईं। मेरे कहने का मतलब था कि धृति और सृष्टि बिल्कुल एक जैसी दिखती है। सृष्टि का हमारे साथ काम करना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। ध्यान रहे, धृति और सृष्टि का भूल कर भी आमना सामना नहीं होना चाहिए। सृष्टि कंपनी में कदम नहीं रखनी चाहिए, उस स्टूडियो तक ही सीमित रखना। उसका कंपनी आना हमारे लिए अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वैसे भी ये नाटक बस 2 महीने का है, उसके साथ हमें सच में काम नहीं करना। तू बस थोड़ा अलर्ट रहना और सृष्टि पर पूरा ध्यान लगाना। तेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर अपना दीवाना बनाने के लिए। हूँ, मैं आज से अपना काम शुरू कर दूंगा और अपने तरफ से 100% दूंगा। कुछ देर और दोनों ने बैठकर बातें की, फिर कबीर वहां से चला गया, अर्णव अपने काम में लग गया।